नमस्कार। ये प्रसारण के श्रोताओं, आपकी सेवा में एक बार फिर अरविंद कंसल हाजिर है। पुणे से पधारे वैद्य दिलीप गाडगिल जी के एक नए प्रोग्राम के साथ। वैद्य गाडगिल जी ने आयुर्वेद में पीएचडी और संस्कृत में एमफिल तक अध्ययन किया है। पिछले 33 वर्षों से आप आयुर्वेद के क्षेत्र में अध्यापन, रिसर्च और चिकित्सा कर रहे हैं। वैद्य जी नमस्कार।
नमस्कार।
ई प्रसारण के हमारे शो पर आपका दोबारा हार्दिक स्वागत है। आप आए बहुत खुशी की बात है। पिछली बार हमने दिनचर्या पर, लाइफस्टाइल पर बातचीत की थी। आपने हमें बहुत सारी आयुर्वेद से जुड़ी इसके बारे में ज्ञान दिया, बातें बताई। आज हम आपसे पूछना चाहेंगे कि खाने पीने में, आहार में, इस विषय पर आयुर्वेद ने क्या कहा है।
दिनचर्या के बारे में हमने बात की थी और दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है आहार। इस प्रकार का वास्तव में ऐसा है कि हम जो खाना खाते हैं उसी से हमारा शरीर बनता है। बाहर से, हवा से, पानी से, ऐसा तो कुछ आने वाला नहीं है। जो हम अंदर डालेंगे,
जो हम ग्रहण करते हैं,
ग्रहण करते हैं, उसी के आधार पर शरीर के जो भी धातु, अग्नि वगैरह जो है या फिर दोष वगैरह जो है, वो सभी उसी से बनने वाले हैं। दूसरा कोई उसमें चारा है ही नहीं। तो इसलिए आयुर्वेद का एक अहम सूत्र है, आहार संभवम वस्तु रोगाश्चाहार संभवाः। यानी कि यहां वस्तु का मतलब है शरीर। जो हमारा शरीर है वो आहार से बना हुआ है और रोग भी आहार से उत्पन्न होने वाले हैं। इसमें स्थिति ऐसी रहती है कि प्राकृत रूप से आहार कैसे लेना है, क्या लेना है, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है वगैरह वगैरह, सभी के बारे में ग्रंथों में पूरी जानकारी दी है। उसके मुताबिक हम करते रहेंगे तो स्वास्थ्य बना रहेगा। दोषों की जो साम्यावस्था है, जो हम जिसको आरोग्य बोलते हैं, वो टिकी रहेगी और फिर उसके आधार पर स्वास्थ्य बना रहेगा। लेकिन थोड़ा भी उसमें अगर परिवर्तन हो जाता है तो दोष की साम्यावस्था ढल जाती है, वैषम्यावस्था निर्माण हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाता है। और एक बार इस प्रकार का होना शुरू हो गया तो फिर रोग बनने में कोई देर नहीं लगती। तो हमें सतर्क रहना है कि हम भली भांति हमारे पथ पर बने रहे, हमारे मार्ग पर बने रहे और स्वास्थ्य के हिसाब से जो सेवन करना है उसी को सेवन करते रहे। वैसे आयुर्वेद के दो प्रयोजन बतलाए गए हैं, एक स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, यानी कि जो स्वस्थ व्यक्ति, आरोग्य संपन्न व्यक्ति है उसके आरोग्य की रक्षा करना, और आतुर से विकार प्रशमनम, ये दूसरा प्रयोजन है कि जो रोगी है उसके रोग को दूर करना। तो रोगी को रोग क्यों होता है ये समझने की
जानना बहुत जरूरी है।
और ज्यादातर प्राण आहार वैषम्यात अजीर्णम जायते नृणाम तन्मूलो रोग संघाता तद विनाशात विनश्यति, इस प्रकार का सूत्र है कि आहार वैषम्य से अजीर्ण एक तरीके से हो जाता है और तन्मूलो रोग संघाता, और वो अजीर्ण जड़ है सारे रोग समूह का, बड़े विशाल रोग समूह का। तद विनाशात विनश्यति, अजीर्ण का अगर नाश हो जाता है तो उसके आधार पर उस रोग समूह का नाश हो जाता है। तो अजीर्ण होना यानी कि अग्नि द्वारा जो पचन शरीर में होना है आहार का प्राकृतिक रूप से, वो नहीं होना। तो एक अग्नि एक वैशिष्ट्यपूर्ण संकल्पना है आयुर्वेद की, जो अन्य शास्त्रों से काफी अलग है। इस प्रकार
भिन्न है
उसकी पहचान।
आपने चूंकि अग्नि की बात कही तो कुछ बताइए कि अग्नि का क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कल्पना है और किस तरह से आयुर्वेद ने इसके बारे में सोचा है।
वैसे क्या है कि अग्नि महाभूतों में से एक है। पांच जो तत्व बताए गए हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पांच तत्व है। तो उसमें अग्नि ये बेसिक महाभूत है। वास्तव में सृष्टि में भी है, हमारे शरीर में भी उसका नियंत्रण है। सृष्टि में हम देखते हैं कि अग्नि पाचन क्रिया करता है, कि हम कच्चा खाना नहीं खाते हैं। जानवर वगैरह सब कच्चा खाने में माहिर है, लेकिन हम जो आदमी है अभी वो संस्कारित करके पकाकर इस प्रकार का अन्न को सेवन करते हैं। तो जैसे बाहर हम एक किसी थाली में या कटोरी में चावल, पानी डाल के उसको उष्णता देते हैं, आंच देते हैं, उससे ज्यादा वो पक जाता है, चावल बन जाता है और फिर उसका हम सेवन करते हैं। तो उसी प्रकार से शरीर में भी अग्नि स्थित है और उसी का उदाहरण उसमें आयुर्वेद में दिया गया है कि आमाशय, स्टमक जो कहलाता है, उसमें अन्न आकर ठहरता है। हम जो सेवन करते हैं वहां पे वो संचय हो जाता है उसका, और उसके नीचे नाभि के स्थान में अग्नि है। तो जैसे बाहर एक कटोरी में ये दाल चावल या फिर पानी वगैरह ऐसा डालते हैं, उसी प्रकार समझ लो कि आमाशय में हमने उसको डाला, उसके नीचे अग्नि है, जैसे हम कटोरी के नीचे अग्नि लगाते हैं उसी प्रकार से, और फिर उसका पचन हो जाता है। तो बाहर जो पचन होता जाता है उससे कारण वो सुलभता आ जाती है, आसानी से पचन हमारे शरीर में हो जाता है, सॉफ्टनेस उसमें आ जाता है इस प्रकार का। अब शरीर के पचन की बात होती है तो हम मानते हैं कि अग्नि का प्रमुख कार्य जो है परिणमन करना इस प्रकार का है। हम जो दाल चावल रोटी सब्जी छाछ दूध घी वगैरह ये सब चीजें लेंगे इस प्रकार से, उससे हमारे शरीर में जो दोष है, धातु है, मल है, अग्नि है वगैरह वगैरह, जो विभिन्न भाव है, उपधातु है, वो सभी बनेंगे। उन दोनों का आधार जो है वो पंचमहाभूतों का है। सृष्टि भी पंचमहाभूतों से बनी है, शरीर भी पंचमहाभूतों से बना है। जब ऐसी स्थिति होती है कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये जो पंचमहाभूत है सृष्टि में जो है, जो हमारे अनाज में वगैरह है, उसके ऊपर एक बाहर का पाचन का संस्कार होता है अग्नि का, जैसे कि हमने अभी बताया कटोरी में हाँ पचाते हैं, खाना पचाते हैं उसी प्रकार से पकाते हैं, वैसे ही उससे संघात भी इस प्रकार से होने लगता है। और एक कल्पना ऐसी है कि हर एक चीज में उसका एक अपना अग्नि होता है और वो उसका अपने आप पचन करते रहता है। एक हम आम का, कच्चे आम का उदाहरण ले लेंगे। बिल्कुल कच्चा आम है जो कषाय रसात्मक इस प्रकार का है, फिर उसमें थोड़ा परिवर्तन होकर वो खट्टा हो जाता है, फिर खट्टा मीठा हो जाता है, फिर मीठा हो जाता है। और हम देखते हैं कि अगर ऐसे ही आम सुखा दे तो उसमें समय ज्यादा लगेगा। आप अगर जो तृण की राशि है उसमें उसको रख देंगे, आढ़ी लगाना इसे इस प्रकार से मराठी में बोलते हैं उसमें, तो उसमें सहायता उस प्रकार से मिलेगी और जल्दी पचन इस प्रकार के होगा, प्रकार का होगा। तो ये कौन कर रहा है? वो आम में स्थित जो उसका अग्नि है वही उसको परिवर्तित कर रहा है। इसलिए कषाय रस से लेकर मधुर रस तक उसका परिणमन होता रहता है। तो उसी प्रकार से जो आहार हम लेते हैं उसमें भी एक अग्नि है, वो अगर हम ऐसा ही रख देंगे बाहर तो वो सड़ जाएगा, उसी अग्नि के कारण ही वो सड़ जाएगा, अपने भीतर जो है वो परिणमन करता रहेगा इस प्रकार से। जब हम उसको भीतर लेते हैं तो जाठराग्नि जो है वो उसके ऊपर काम करना आरंभ कर देता है, तो उसके जरिए उसका एक विश्लेषण इस प्रकार का हो जाता है, पंचमहाभूतों के मूल पंचमहाभूतों की तरफ उसका जाना आरंभ हो जाता है, और किसी एक स्तर पर फिर से पंचमहाभूतों का संयोग होकर शरीर के जो अवयव है वो बंद है। एक तरीके से एक ब्रेकडाउन है और फिर से
रिसिंथेसिस
इस प्रकार की चीज है। तो इस प्रकार से जो भी हम खाना खाते हैं उसका पचन होता है और शरीर धातुओं में परिवर्तन इस प्रकार का होता है। अभी बचपन से हम सुनते आए हैं कि शरीर में विभिन्न प्रकार के सिक्रीशंस होते हैं, जूसेस निर्माण होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीशन आता है सलाइवा का, आमाशय में एचसीएल वगैरह ऐसे कुछ सिक्रीशंस आते हैं, फिर लीवर से कुछ आते हैं, पैनक्रियाज से कुछ आते हैं वगैरह इस प्रकार से, और फिर इसके जरिए प्रोटीन का इसके द्वारा पचन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का इसके द्वारा पचन हो जाता है वगैरह वगैरह हम सीखते आए हैं। आयुर्वेद का कहना इससे थोड़ा अलग है, इस प्रकार के जो बताते हैं आधुनिक वैदिक में जो बताते हैं उसके मुताबिक वो कहते हैं कि हम षड्रसात्मक इस प्रकार का आहार लेते हैं और सभी क्रियाएं जो होती है वो अग्नि द्वारा होती है। अभी हमने मान लिया कि कोई कार्बोहाइड्रेट है उसके लिए कुछ पाचक स्राव है, तो हमने बाहर कटोरी में वो कार्बोहाइड्रेट लिया, उसके ऊपर वो डाला और देखने लगे कि हाँ उससे रक्त रक्त वगैरह बनेगा, तो वो कुछ नहीं होगा, शरीर में ही बनेगा, वो बाहर नहीं बनेगा। और दूसरी चीज ऐसी है कि एक आदमी खा रहा है और वही खाना एक कुत्ता खा रहा है, तो वही ब्रेड या वही रोटी जो कुत्ते ने खाई उससे कुत्ते के धातु बनेंगे, मानुष के नहीं बनेंगे। मनुष्य ने खाया तो उससे मनुष्य के बनेंगे। तो ये बताते हैं कि अचिंत्य इस प्रकार की एक शक्ति है अग्नि की, कि जो अपने भावों में उसको परिवर्तित कर लेता है शरीर के जो भी भाव है। और इसमें दो तरीके से या तीन तरीके से स्तर होते हैं उसके। एक जिसको स्थूल पचन हम कहते हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल में होता है, मुख से लेकर गुदा तक जो है उसको एक महास्रोत हमारी आयुर्वेद की एलोपैथी में एलिमेंट्री कैनाल इस प्रकार से कहते हैं। तो उसमें ऐसा होता रहता है कि अन्न जो ले लिया उसके ऊपर कुछ परिणमन हुआ, और उसमें से ग्राह्य भाग जिसको सार भाग कहते हैं और त्याज्य भाग, ऐसे दो निर्माण होते हैं। उसमें जैसे कुछ भी हमने ले लिया तो उसमें से स्वीकार्य क्या है और वेस्ट प्रोडक्ट जैसा क्या है। तो सार भाग जो है उसके धातु बनते हैं, शरीर के टिश्यूज जो है वो बनते हैं, और दूसरे को किट्ट भाग कहते हैं जो त्याज्य भाग उससे निर्माण होता है। तो पुरुष जो मल है या मूत्र ये ग्रॉस या स्थूल पचन में निर्माण होते हैं, वो मलिन करने वाले हैं शरीर को, तो वो बाहर जाने चाहिए, ऐसा ही है। और यही सिलसिला आगे भी चलता रहता है। फिर हमारे हिसाब में 7 धातु है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इस प्रकार के 7 धातु बताए गए। और ये जो आहार रस जो बनता है, आहार से सारा भाग उसका, उसके ऊपर हर धातु का एक अग्नि होता है, तो भी फिर वो आगे उसको पचा लेता है और फिर रस धातु में परिवर्तन उसका होता है, रक्त में होता है, मांस में होता है, इस प्रकार से वो परिवर्तन होता होता शुक्र तक पहुंचता है जो परम जो है पुरुष का, या स्त्रियों में जो ओवम है, स्त्री बीज इस प्रकार का आर्तव कहते हैं हमारे यहाँ। तो सुश्रुताचार्य बताते हैं कि एवं मासेन शुक्र बनता है रस से, अब स्त्रीणांच आर्तवम, स्त्रियों में आर्तव बनता है, तो एक महीना लगता है। आज हमने जो खाना लिया उसका एक स्थूल पचन आज के दिन ही हो जाना है, मलमूत्र उसमें से बनेंगे, सार भाग बनेगा, उस सार भाग पर धात्वग्नि की प्रक्रिया बनती रहेगी, पंच महाभूतों के अग्नियों की भी प्रक्रिया बनती रहेगी, और उसका परिवर्तन धीरे धीरे होता रहेगा और एक महीने के अंदर उससे शुक्र बनेगा या स्त्रियों में आर्तव बनेगा इस प्रकार से। तो इसको हम सटल डाइजेशन या सूक्ष्म पचन इस प्रकार से कहते हैं कि जो काफी लंबी प्रोसेस होती है। अब हमारे हिसाब में इन दोनों का बहुत ही अहम रोल है। एक तो धात्वग्नि या पंचभूताग्नि की जो प्रक्रिया होती रहती है वो अंदर चलने वाली प्रक्रिया है, परिणामों से हम उसको माप सकते हैं कि क्या चल रहा है, बराबर चल रहा है नहीं चल रहा है इसको। लेकिन वैसे स्थूल पचन को थोड़ा समझना आसान है, चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक चल रहा है, किस प्रकार से है। तो इनका कहना ऐसा है कि योग्य मात्रा में ही अन्न खाए, मात्रा प्रारंभ में निर्दिष्टम सुखम यावत विजीर्यति, जिससे सुख से पचन हो जाए अन्न का वो योग्य मात्रा है। अभी एलोपैथी में क्या हुआ कि हर व्यक्ति की जरूरत कितनी है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई श्रम करने वाला आदमी है तो उसको ज्यादा कैलोरीज चाहिए, कोई सिडेंटरी काम करने वाला है कम कैलोरीज में काम कर सकेगा, गर्भिणी अवस्था है ज्यादा कैलोरीज की आवश्यकता है, बढ़ते बच्चे है ज्यादा कैलोरीज की आवश्यकता है इस प्रकार से। लेकिन अगर ज्यादा कैलोरीज की आवश्यकता है लेकिन वो पचाने का सामर्थ्य नहीं है उसमें, तो न केवल उसके फायदा नहीं होगा उससे नुकसान होगा। क्योंकि स्थिति ऐसी है कि अगर भली भांति उसका पचन नहीं हो पाएगा तो हमारे हिसाब में आम नाम का एक पदार्थ बनता है, टॉक्सिन बोलते हैं उसको, और ये आम विष कहा जाता है, वो बड़ा कारण है रोगों का। रूमेटॉइड आर्थराइटिस से लेकर मल्टीपल स्क्लेरोसिस और बहुत सारे रोगों में, बुखार वगैरह ज्वर सभी में ये आम एक कारण है, अहम चीज है। तो हम जिक्र करते हैं कि जो खाना हमें खाना है वो बड़ी सावधानी से लेना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्योंकि हम जो खाएंगे उसी से शरीर बनेगा, दूसरी कोई है चीज नहीं इसके बारे में। और उसमें भी दो स्तर होते हैं वैसे, एक दोषों का स्तर है कि अगर कुछ खाना ले लिया उससे कुछ बिगड़ा, मानो कि पित्त हो गया समझो, खट्टी डकारें आने लगी या उल्टी का सेंसेशन हुआ, उल्टी कर दी पित्त निकल गया तो शांति हो जाएगी, ऐसा कोई उसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। लेकिन ये कैसा है कि ये हम समझ सकेंगे कि वह ठीक है इस प्रकार से कुछ गड़बड़ हो रही है, तो किस कारण से गड़बड़ हो गई वो समझ लेना और फिर वो टालना और जो हुआ है उसके हिसाब से कुछ करना। लेकिन ये वैसे भी थोड़ा सुपरफिशियल है। अगर धातुओं में इस प्रकार से परिवर्तन होने लगते हैं, जैसे कि कैंसर के बारे में देखते हैं, हम लेक्चर अलग लेक्चर कैंसर के बारे में करेंगे
जी,
तो जो सेल्स बनते हैं वही एबनॉर्मल बनते हैं, उसका निर्माण ही एबनॉर्मल हो जाता है। तो ये एक सबसे कठिन बात है, इस प्रकार अगर निर्माण ही एबनॉर्मल इस प्रकार का अप्राकृतिक इस प्रकार का हो जाएगा, विकृत हो जाएगा, तो उसको सुधारने में बहुत समय लगता है। दोषों के स्तर पर है, हमने पंचकर्म कराए, वमन विरेचन बस्ति वगैरह करवाए, उनको बाहर निकाल दिया, थोड़ी उसमें कठिनाई है लेकिन उतनी कठिनाई नहीं है। लेकिन कैंसर वगैरह जैसे रोगों में जहां मूल रूप में ही परिवर्तन हो जाता है, बदलाव आ जाता है, वो काफी दिक्कत वाली बात। तो उस सभी दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमें आहार की तरफ बहुत गहराई में जाकर सोचना है और सोच समझ कर ही खाना है, ऐसा वास्तव में है।
तो आपने जैसे कहा कि आयुर्वेद के शास्त्रों में, ग्रंथों में जो बताया गया है कि अगर आप सही मात्रा में सही तौर पे खाएं तो आप हृष्ट पुष्ट रहेंगे, आपको व्याधियां नहीं होंगी। और जैसा आपने कहा कि दूसरा तरीका है कि जिनको व्याधि है, जिनको बीमारी है और वो अच्छा होना चाहते हैं, उनके लिए भी आहार के नियम है। तो ये जो आहार के नियम बताए गए हैं जो स्वस्थ रहने के लिए, जो वैसे भी स्वस्थ हैं और वो अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहते हैं, ये जो नियम बताए गए हैं ये बहुत बारीक नियम है कि स्थूल है?
वैसे बहुत बारीकी से विचार किया गया है नियमों के बारे में, उसको आहार विधि विशेष आयतन इस प्रकार की संज्ञा चर्काचार्य ने दी है। आहार विधि का मतलब है आहार कैसे सेवन करना, और उसके लिए जो विशेष कारण है, आयतन का एक मतलब स्थान या कारण इस प्रकार का होता है। तो किन मुद्दों का विचार करके किस प्रकार से आहार का सेवन करना है इसके बारे में चर्काचार्य सविस्तर बताते हैं। तो एक एक करके हम उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे, ये काफी बड़ा विषय है।
बिल्कुल बड़ा विषय।
तो बोलते हैं प्रकृति, ये पहला है उसमें सोचने का विषय। प्रकृति तो स्वभाव, इस प्रकार जो द्रव्य का मूल स्वभाव है उसको पहले पहचानो। खास करके कौन सी चीज गुरु है, पचन होने में ज्यादा समय लेगी, कठिनाई होगी, और कौन सी लघु है, हल्की है पचन होने में। तो बोलते हैं मुद्ग और माश। मुद्ग यानी कि मूंग जो है वो पचन होने में सबसे आसान है, हल्का है, और माश उड़द दाल जो है वो सबसे जड़ है, भारी है पचन होने में, गुरु है। तो इसका एक मतलब हो गया कि उसका प्राकृतिक गुण मूंग का हल्का होना और माश का गुरु होना इस प्रकार का है। वैसे गोधूम गुरु है, गेहूं जो है वो गुरु है इस प्रकार से। चावल उस हिसाब से देखा जाए तो हल्का है इस प्रकार से। या फिर मांस वर्ग में सुकर का मांस जो है, सुअर का मांस, वो गुरु है ज्यादा। बकरी का ले लेंगे तो हल्का है इस प्रकार से। तो मूल रूप से हमें यह समझ लेना चाहिए कि कौन सा पदार्थ का किस प्रकार का स्वभाव है। वैसे मिर्च में तीखापन ज्यादा है, तीक्ष्ण उसका गुण है, उष्ण भी उसका अच्छा गुण है। उसके विपरीत नवनीत ले लेंगे, मक्खन ले लेंगे, तो वो मृदु है, शीत है, स्निग्ध है, इस प्रकार का है। तो मूल रूप द्रव्य में किस प्रकार के गुण है वो समझ लेना, ये प्राकृतिक गुण को जानना इस प्रकार का है, वो उसको प्रकृति इस नाम से बताते हैं। फिर दूसरा आता है वो करण नाम का आता है, जिसको संस्कार इस प्रकार का कहते हैं। तो बहुत सारे संस्कार हम द्रव्यों के ऊपर करते हैं। जब हम खाना पकाते हैं तो उसको धो लेते हैं, भूनते हैं उसको, उसको तड़का देते हैं, डीप फ्राई करते हैं, पकाते हैं पानी डाल के, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो इनमें सभी में एक अहम रोल अग्नि का है, बहुत सारे प्रोसेस में अग्नि इन्वॉल्व है, ये एक चीज है। और अग्नि संस्कार से प्रायः जो द्रव्य है, जो पदार्थ है, वो हल्का हो जाता है। चावल हम ऐसे भी नहीं खा सकते, चावल को पका कर ही खाते हैं इस प्रकार से, या दाल ऐसे ही नहीं खाते, वो पकाकर उसकी दाल बना के उसको खाते हैं, सेवन करते हैं। तो अग्नि संस्कार से उसमें सुलभता आ जाती है, जो गुरु है वास्तव में वो थोड़ा हल्का इस प्रकार का हो जाता है, ये एक अहम चीज है। वैसे दूध के बारे में भी कहा गया है, धारोष्ण दूध जो है, तुरंत निकाला हुआ जो गर्म है केवल दोहन से, वो सबसे बढ़िया है, वैसे ही आप पी जाए, उसमें कोई करने की कुछ भी करने की जरूरत नहीं। लेकिन एक बार वो ठंडा हो जाता है थोड़ी देर के लिए तो वो गर्म करके लेना है, ऐसा है। और युक्त्याश्रुत इस प्रकार से ग्रंथों में बताया गया है, उसमें चौथा हिस्सा पानी डाल के उबाल के फिर वो दूध लेना है, वो पानी उड़ा दे तो वो भी चलेगा इस प्रकार से,
ताकि वो फिर वो आसान हो जाए।
हाँ, आसान हो जाए। तो इस प्रकार का जो दूध है वो पचन में हल्का हो जाता है। अभी वही अग्नि संस्कार की बात है, लेकिन अगर उसको भी अगर हम आगे उबालते रहेंगे तो उसका पानी का अंश कम होता जाएगा, दूध गाढ़ा बनता जाएगा, बासुंदी बनी उसकी, तो वो दूध के मुताबिक वो गुरु हो गई पचन में, उसकी रबड़ी बनाई और भी गुरु हो गई, उसका खवा बनाया, उससे पेड़े वगैरह कुछ बनाए, बर्फी बनाई और भी गुरु हो गई। तो वास्तव में अग्नि संस्कार ही है, फिर भी अग्नि संस्कार से द्रवता कम होती जा रही है और गुरुता बढ़ रही है, उसमें पार्थिव और जल दो प्रकार के अंश है, उसमें जलीय अंश कम होता जा रहा है, पार्थिव अंश बढ़ता जा रहा है, तो वो ज्यादा गुरु है इस प्रकार से, तो इसलिए गुरुत्व बढ़ जाता है। लेकिन दूसरी ओर प्रायः सभी क्षेत्रों में अग्नि से लघुता बढ़ती है, गुरुता कम हो जाती है, और जितना अग्नि से साक्षात संपर्क रहेगा उतना लघुता और बढ़ेगी। यानी कि बाष्प स्वेद बताते हैं, कुकर जो हम चावल या दाल पकाते हैं कुकर में, वो बाष्प स्वेद का नमूना है, या इडली बनाते हैं वो भी बाष्प स्टीमिंग जो है स्टीमिंग। वो बाष्प स्वेद का है, तो ये भारी होता है पचन होने में। उसके बाद में किसी पैन में हम रोटी को रोस्ट करते हैं या भून लेते हैं, इस प्रकार से कढ़ाई में डाल के भून लेते हैं, तो वो थोड़ा हल्का होने में ज्यादा मदद होती है उस प्रकार में। और डायरेक्टली अगर अग्नि पर ही सेकते हैं, जैसे कि ज्वार की रोटी बनती है, तो पहले पैन के ऊपर करते हैं और फिर सीधे अग्नि पर रखते हैं, या फिर फुलका बनाते हैं,
फुलका भी इस तरह से,
तो उसी प्रकार से बनता है, पहले इसमें सेक लेते हैं पैन के ऊपर और फिर तवे के ऊपर और फिर अग्नि में डालते हैं, तंदूर रोटी बनती है, वो भी इसी प्रकार अग्नि से साक्षात संपर्क हो जाता है। तो जहां अग्नि से साक्षात संपर्क होगा वो पचने में हल्का होगा। बाष्प का संबंध रहेगा वो थोड़ा ज्यादा गुरु रहेगा, और इस प्रकार के पैन का कोई इस्तेमाल होता है वो बीच वाला इस प्रकार का रहेगा। तो ऐसे बारबेक्यू भी है नॉनवेज में, शूल्य मांस आयुर्वेद में कहते हैं उसको, तो उसको डायरेक्टली अग्नि पर पकाते हैं इस प्रकार से, वो सबसे हल्का हो जाता है। कुकर में उसको पकाएंगे वो भारी होगा पचन इस प्रकार से। तो अग्नि इसमें एक महत्वपूर्ण संस्कार है, और फिर उसके जरिए जो परिवर्तन आते रहेंगे उसको भलीभांति समझना है। अभी फिलहाल हुआ ऐसे कि पुराने जमाने में चूल्हा था, लकड़ियों का इस्तेमाल होता था, फिर कोलसे का कोयल का इस्तेमाल होता था,
कोयले पे बताए,
और फिर आगे ये गैस आ गया, अभी जो करते हैं हम गैस के ऊपर करते हैं, फिर आगे चलकर अभी माइक्रोवेव निकला है। तो इन सभी के बारे में किस प्रकार से पचन की प्रक्रिया होती है, उसमें अंतर क्या होता है, ये समझ लेना जरूरी है। वास्तव में इसमें एक अहम चीज है कि हमारी एक जीवन की गति है, उस गति से मिली जुली गति जिसमें होगी वो हमारे लिए फायदेमंद होगा,
वो श्रेयस्कर होगा,
हाँ प्रशस्त रहेगा। अगर हम गति को बढ़ाएंगे तो हमारी भी गति बढ़ जाएगी, और गति बढ़ जाना यानी कि मृत्यु समीप आना, जीवन की गति बढ़ जाना इसका सीधा मतलब है कि मृत्यु नजदीक आ जाना। अभी जो फास्ट फूड का जमाना है, प्रिपेयर्ड रेडी टू ईट इस प्रकार के पदार्थ मिलते हैं, और फिर उसको माइक्रोवेव में गर्म करना है और देर सर्व करना है इस प्रकार से, ये सबसे गलत बात चीज है। हमारे हिसाब में एक तो खाना फ्रेश ही होना है, ताजा पका हुआ इसी प्रकार का ही होना है, और उसको फिर से गर्म करना वगैरह ये सभी चीजें है, तली हुई चीजें बहुत सारी होती है उसमें, तो ये सभी बातें गलत है इसके हिसाब से। और माइक्रोवेव का इस्तेमाल है वो भी अच्छा नहीं है इन सभी में। तो कहने का मतलब यह है कि संस्कार किस प्रकार का हो रहा है ये देखने की चीज है। दूसरी ओर एक दूसरा संस्कार हम कर रहे हैं रेफ्रिजरेशन का इस प्रकार का, जैसे मैंने एक बात की थी कि एक अपना खुद का अग्नि है द्रव्य का, वो पचन करता रहता है, बाह्य वातावरण से अगर उसको उष्णता मिलती है तो पचन फास्ट होता है। गर्मी के मौसम में पदार्थ जल्दी खराब हो जाते हैं, ठंडी के मौसम में थोड़ी देरी से खराब होते हैं इस प्रकार से। तो उसी तत्व को लेकर रेफ्रिजरेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई, तो हम समझ पाते हैं कि हाँ फ्रिज में रखेंगे तो फ्रेश रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बदलेगा नहीं, वो ऐसी चीज नहीं है, परिवर्तन तो होता ही रहता है, स्लो हो जाता है इतना ही है। और वास्तव में हम उसमें मानते हैं कि दो तरीके के संस्कार होते हैं परिवर्तन जब होता है तो, एक अग्नि द्वारा कुछ परिवर्तन होता है और एक काल द्वारा होता है। शायद बाह्य अग्नि को हम सीमित कर लेंगे और फिर अग्नि द्वारा जो परिवर्तन होता है वो थोड़ा धीमा हो जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा कि यह परिवर्तन हुआ है इस प्रकार से, लेकिन काल दृष्टया जो परिवर्तन है वो तो होने ही वाला है। पर्यूषित तो होना, स्टेल फूड जिसको कहते हैं, वो चीज बनी रहती है इस प्रकार से। तो हम सुझाव देते हैं कि नहीं खाना है फ्रीज का वास्तव में।
अच्छा।
तो लोग बोलेंगे कि कैसे होगा, ये तो हफ्ते में एक बार बाहर निकल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा सब्जी लेने के लिए, तो आकर फ्रीज में रख देंगे और निकाल के हर रोज बनाएंगे। तो हम समझते हैं कि ठीक है, इतना मान लेते हैं कि इसमें काफी कठिनाई है, लेकिन आज खाना तैयार हो गया, शेष रह गया, फिर क्या करें, फेंक तो नहीं सकते है, हमारी संस्कृति कुछ कहती है।
बिल्कुल,
तो नहीं फेंकना है तो क्या करना है, दूसरे दिन वैसे ही रखेंगे तो खराब हो जाएगा, वापस फ्रिज में रख दिया इस प्रकार से, और दूसरे दिन उसको निकाल के गर्म करके खा लिया इस प्रकार से, तो ये गलत ही है हमारे हिसाब में। आइदर उतना ही पकाओ जितनी जरूरत है, कितने लोग जो भोजन करने वाले हैं उनकी कितनी राशि उनके लिए चाहिए इसका पूरा अंदाजा गृहिणी को होना है, और उसी के माफक जो कुछ करना है वो करना है, और उसके बाद में भी अगर थोड़ा रह जाता है तो हमारे यहाँ भूखे लोगों की कमी नहीं है वास्तव में, तो उसी दिन उनको बांट दे, दूसरे दिन नहीं देना है, उसी दिन बांट देना है इस प्रकार से।
इसलिए फ्रेशनेस पर बहुत जोर है,
फ्रेशनेस पर बहुत जोर है। अभी लोग क्या समझते हैं कि ऐसा वो फ्रिज में रख दिया तो टिक जाता है, उसमें कोई खराबी नहीं आती है, और मुझे आश्चर्य हुआ कि जो भारतीय अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज में गए हैं, माइग्रेट हुए हैं, उन्होंने अपने सभी पुराने आदतें छोड़ दी, और फ्रेश खाना तो बात दूर ही रही, हफ्ते का 15 दिन का महीने का खाना करके फ्रिज में रख देते, डंप करते, और फिर उसमें से निकाल के माइक्रोवेव में डाल के गर्म करके खा लेते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है, इस प्रकार से करना ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक चीज है। तो इस प्रकार से संस्कार जो होते हैं, सभी संस्कारों के बारे में इस प्रकार से सोचना है। अभी हम मिक्सर ग्राइंडर की बात करते हैं, पहले जमाने में तो ये पाटा वरवंटा कहते हैं, इस प्रकार से पत्थर का इस्तेमाल होता था, और उसमें जो स्वाद रहता था वो अलग चीज थी, उसमें पीड़न संस्कार है, दबाना है उसको, कुचलना है इस प्रकार से, और मिक्सर ग्राइंडर में कटिंग एक्शन है, तोड़ना है, फिर बहुत तेज गति से तोड़ना है इस प्रकार से है। हम देखेंगे कि मूंगफली की चटनी मिक्सर में करते हैं और मूंगफली की चटनी कूट के करते हैं तो टेस्ट में काफी परिवर्तन आता है। आपने देखा है कभी?
नहीं, तो गौर नहीं किया, अगली बारी जरूर करके देखेंगे।
तो इसमें काफी परिवर्तन आ गए हैं। दूसरी एक चीज इसमें ऐसी होती है कि मंथन संस्कार है, दही है वो सूजन निर्माण करने वाला है, और सिर्फ उसी दही को मंथन करके हमने छाछ में परिवर्तित कर लिया तो वो सूज हटाने वाला है, सूजन हटाने वाला है, और जब हम हाथ से मंथन करते हैं तो वो बाई डिरेक्शनल होता है, दोनों हाथों से जब मंथन करेंगे तो दोनों दिशाओं में वो घूमता है। अभी ब्लेंडर का इस्तेमाल आ गया है, उसमें यांत्रिकीकरण हो गया, ब्लेंडर की एक ही दिशा में घूमता है, तो इसमें अंतर है। एक जो प्राकृतिक बैलेंस होता है दोनों तरीके से घुमाने से, वो प्राकृतिक बैलेंस नहीं रहता। अब इसके दूरगामी परिणाम क्या होने वाले हैं ये सोचने की बात है। इसी प्रकार से जो भी संस्कार, प्रेशर कुकर से लेकर जो भी संस्कार है, पुराने जमाने में ऐसा होता था, कोंकण में विशेषता इस प्रकार की पद्धति प्रचलन में थी कि ज्यादा पानी डाल के चावल जो है वो पकाने के लिए रख देते हैं, फिर उसमें से पानी निकाल लेते हैं और वही पी जाते हैं सुबह, और वो जो चावल है वो पकता रहता है, दोपहर तक वो पक जाएगा तो फिर वो चावल को खा लेते हैं, उसमें दाल डाल के वगैरह ऐसा कुछ खा लेते हैं। तो इसको प्रसृतोदन इस प्रकार का, जिसमें से पानी निकाला गया है वो प्रसृतोदन है, वो हल्का हो जाता है ऐसे। अभी हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो वहां कोई प्रसृत करने का कोई चांस ही नहीं है, वो थोड़ा जल्दी होता है, ये धीमे गति से चलता है, लेकिन फिर भी चीज ऐसी है कि गति को बढ़ाना जरूरत है क्या हमारी? अभी यहां स्लो कुकर्स का जमाना भी चल रहा है, थोड़ा सा उभर आ रहा है, और उसमें यही माहौल है कि हमारी जो एक गति है उस गति से हमें चलना है, तो उस गति को मैच करने वाली गति हमारी होनी चाहिए इस प्रकार से। हाथ से करेंगे तो गति मैच रहेगी, यंत्रों से करेंगे तो तेज गति हो जाएगी, और वो अंत में हमारे लिए हितकारक नहीं है, ऐसा है। अभी लोग सहमत नहीं होंगे, इतनी आसानी है, अभी सुविधा है, उन सभी को छोड़कर फिर से कष्ट करने लगे, ऐसा थोड़ा सा होगा, लेकिन ठीक है, ये करण की बात हुई, संस्कार की बात हुई। फिर एक संयोग की बात बताते हैं कि दो या तीन द्रव्यों का या ज्यादा द्रव्यों का संयोग जब होता है, द्वयो बहुनाम व संहति भाव सविशेषम आरभते यन्न एकैकशा द्रव्याणि आरभन्ते, ये सूत्र है। तो दो चीजें या उससे भी ज्यादा चीजें इकट्ठा हो गई तो उसका जो इफेक्ट बनेगा उसके बारे में सोचना काफी मुश्किल होता है। कहीं जगह सिनर्जिस्टिक इफेक्ट मिलता है, जिसको हम प्रकृति समसमवाय इस प्रकार से आयुर्वेद में जानते हैं। कुछ में जो शामिल होने वाले जो द्रव्य है वो एक दूसरे के लिए अनुकूल इस प्रकार के है, और फिर उसका जो एक परिणाम बनेगा वो बहुत बढ़िया परिणाम बनेगा, सभी के गुणों की वृद्धि इस प्रकार के होगी। आसान का उदाहरण है शरबत का। गर्मी के मौसम में पानक के बारे में, शरबत का जो संस्कृत शब्द है पानक इस प्रकार का है, उसका इस्तेमाल करना है ऐसा बताते हैं, और ऐसे बहुत सारे पानक प्रचलन में है। तो नींबू पानी का अगर पानक ले लें, नींबू पानी शक्कर और नमक इस प्रकार से, ठंडा पानी है मटके का इसका तो नहीं कहूंगा, और इसमें नींबू शक्कर नमक ऐसा डाला और फिर मिक्स कर लिया। हमारे हिसाब में ये जो तीन रस है, खट्टा रस, मधुर रस और लवण रस, ये तीनों कफ वर्धक है और वात को कम करने वाले, वात का शमन करने वाले। गर्मी के मौसम में ऐसा होता है कि कफ कम हो जाता है और वायु बढ़ता रहता है, तो दोनों को काउंटर बैलेंस करने के लिए सबसे अहम है। फिर ठंडा पानी का इस्तेमाल है, प्यास बहुत लगती है, उसमें पानी की जरूरत भी ज्यादा रहती है, तो उसको भी वो बुझा देती है, और वैसे उस सीजन में शरबत की संकल्पना बढ़िया है, उसको इस्तेमाल में लाना है। वो चाहे इसका शरबत बनाए, कोकम्स का शरबत बनाए, या फिर अन्य रस वगैरह इसको लेकर, द्राक्षा वगैरह ऐसे कुछ करके लेके बनाए इस प्रकार से।
पर उसमें तीनों रसों का संयोग जरूरी है, मधुर,
क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कफ कम होता जाता रहता है और वायु बढ़ता रहता है, तो कफ को बढ़ाना है और वायु का कम करना है, उस हिसाब से ये तीनों रस अनुकूल है। लेकिन जब हम दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें जिनके विभिन्न स्वभाव है एक में आ जाती है। सब्जी ले ली या दाल ले ली, तो चाहे तुअर की दाल हो, मूंग की दाल हो, कुछ भी हरड़ हो, कुछ भी हो इस प्रकार से, अरहर इस प्रकार की हो, और फिर उसको पका लिया, तड़का बना लिया, तेल डाला उसमें, सरसों का बीज जो है मोहरी वो डाली, और फिर हिंगू डाला, हल्दी डाली वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और फिर कुछ थोड़ा मिर्च का पाउडर या ऐसा कुछ तीखा, थोड़ा नमक, थोड़ा गुड़ वगैरह ऐसा कुछ, थोड़ी खट्टी चीजें वगैरह वगैरह ऐसे सब डाल के करी बना ली इस प्रकार से। तो इसका बहुनाम द्रव्याणाम सुमति भावा इस प्रकार से होता है, और उसका एक रिजल्टेंट, उसकी एक टेस्ट अलग आती है, वो हर बनाने वाली औरत की खासियत उसमें होती है, थोड़े से मसालों का क्या इस्तेमाल करते हैं और उसकी कुछ खूबी है उसमें, तो उसके तरीके से वो अलग अलग टेस्ट बनती है इस प्रकार से। लेकिन ये एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है, चाहे विभिन्न द्रव्य इकट्ठा आए हो, लेकिन एक सभी का मिलके एक अच्छा परिणाम, अच्छा नतीजा निकलता आता है, और खास करके पारंपरिक जो भी पदार्थ है वो इसी प्रकार से बनते आए हैं, और सैकड़ों वर्षों से ये प्रचलन में है और सिद्ध हुए है कि अच्छे हैं इस प्रकार से। फिर भी कुछ गलतियां भी होती है, तो ये बताते हैं कि दूध और फल दोनों अलग अलग अपने अपने स्थान पर अच्छे हैं, इकट्ठा किया गया दूध और फल को तो वो विरुद्ध बन जाते हैं।
उसमें हर किसी फल पर ऐसा इसका नतीजा है कि कुछ फल हैं जो उनका दूध के साथ ठीक रहता है।
वास्तव में ग्रंथों के अनुसार सभी फल के बारे में नहीं ही करना है ऐसा ही,
उसकी मना ही है।
हाँ, नहीं था दूध और फल इकट्ठा नहीं करना है इस प्रकार से। लेकिन आगे चलकर योग रत्नाकर में दूध और आम्रफल, आम जो है वो विरुद्ध नहीं है ऐसा बोलते, क्षीरमित्र इस प्रकार के उन्होंने देके रखे हैं, तो वो चल सकता है ऐसा उनका कहना है। फिर भी चरक का जो सूत्र है उसके अनुसार नहीं लेना है ऐसा है तो हम चरक को ज्यादा प्रमाण मानते हैं, तो हम बताते हैं नहीं लेना है। सिर्फ जो ड्राई फ्रूट्स में जो चीज है वो थोड़ी अलग चीज है, तो शायद बादाम वगैरह ऐसा कुछ अगर हम लेंगे इसके बारे में, या फिर सूखा अंजीर वगैरह इस प्रकार से लेंगे तो वो चलता है ऐसा है। लेकिन फिर भी सोच समझ कर ही, वैद्यों के सलाह से ही करना इस प्रकार का है। तो दूध और फल इकट्ठा नहीं लेना है, केले का शिकरण बनाते हैं, केला और दूध इस प्रकार के, फ्रूट सैलेड्स बनाते हैं, मिल्क शेक्स बनाते हैं, आइसक्रीम विद फ्रूट्स बनाते हैं, तो ये सभी विरुद्ध है हमारे साथ। अगर आप एक आध बार कभी महीने दो महीने में खा लिया तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हर रोज खाने लगे, हफ्ते में तीन चार बार खाने लगे तो ये जरूर तकलीफ करता है। उसी प्रकार दूध और लवण, नमक जो है उसका संयोग विरुद्ध है, तो दूध चावल रोटी, दूध चावल या दूध रोटी इस प्रकार से लेते हैं, चावल और रोटी में नमक डालते हैं नियमित रूप से, अगर डालते रहते हैं और इस प्रकार का सेवन नियमित रूप से करते हैं तो दिक्कत आ जाती है। अभी चाय के साथ बिस्किट, ये बहुत कॉमन है, तो बिस्किट में भी नमक रहता है और चाय में दूध रहता है। और फिर नमकीन बिस्किट भी होते हैं,
बिल्कुल,
तो वो और ज्यादा खतरनाक इस प्रकार का जाता है कि ये कॉम्बिनेशन वाइज अच्छा है इस प्रकार।
तो हालांकि चाय में दूध बहुत कम होता है, फिर भी ये विरुद्ध आहार
होता है। सिर्फ इतना ही है कि बहुत दिनों से बहुत काल तक ऐसा चल रहा हो तो एक हेतु बन जाता है, और अगर आपकी परिस्थिति ऐसी है कि नहीं अभी उसको रोकना ही है तो बेहतर ऑप्शन ये नहीं लेना, ऐसा ही इस प्रकार का दूध बिस्किट या दूध वगैरह ऐसा कुछ नहीं खाना, ये सबसे बेहतर ऑप्शन है। तो दो या उससे भी ज्यादा द्रव्य इकट्ठा आने पर उसका एक अलग परिणाम हो सकता है, और वैसे मॉडर्न केमिस्ट्री में भी ये मालूम है, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स इस प्रकार की बात कहते हैं। तो उसमें मिक्सचर्स के बारे में, जैसे हमने आयुर्वेद में करते हैं दो तीन चार वनस्पतियों का सम्मिश्रण कर लेते हैं, उसी प्रकार सा होगा, और उसमें सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होगा या फिर दूसरा भी हो सकता है, एक दूसरे को खत्म करते हैं, इस प्रकार से होता है, तो वो भी एक चीज हो सकती है। तो वो सभी ध्यान में रखकर इसका इस्तेमाल कहां करना है कहां नहीं करना है ये समझ लेना।
पर केमिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो उनके लिए वॉल्यूम जो है कितनी मात्रा में है उसका काफी महत्व है। अगर आप ज्यादा मात्रा में मिक्स करेंगे उसका परिणाम अलग होगा, थोड़ा किंचित मात्रा में होगा उसका परिणाम बहुत ही कम होगा। तो जैसे आपने ये दूध में, चाय में दूध वाली बात बताई, उसके बिस्किट लेने वाली बात बताई, तो इसमें आयुर्वेद के हिसाब से मात्रा जरूरी है कि नहीं?
है, जरूरी है ना, वो तो सही है मात्रा का जो आपने बताया, कहीं कहीं मात्रा से भी परिणाम होता है, ऐसा स्पष्ट निर्देश है। घृत और मधु सम मात्रा में नहीं लेने हैं एक साथ, ऐसा मात्रा विरुद्ध इस प्रकार से उसको बोलते हैं, लेकिन सभी चीजों में ये थोड़ा सा रहेगा ही। हम बोलते हैं कि थोड़ा अगर मिर्च ज्यादा पड़ गया, मात्रा उसकी थोड़ी बढ़ गई तो बहुत तीखा हो जाता है, वैसे वो प्रमाण तो जितनी दाल लेते हैं उतना तो मिर्च नहीं लेते हैं, मिर्च अपनी मात्रा में होती है, उसमें भी थोड़ी भी मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो वो पूरी करी जो है वो तीखी हो जाएगी इस प्रकार से। तो हरेक की अपनी अपनी एक मात्रा है इस प्रकार से, उससे कम ज्यादा होना उसके हिसाब से वो पदार्थ कैसा बनेगा ये थोड़ा सा निर्भर रहेगा। तो भली भांति समझ लेना चाहिए, यहाँ एक आर्य चाणक्य ने आर्यों के भोजन के बारे में लिखा है कि चावल का चौथा ही हिस्सा दाल, उसका चौथा ही हिस्सा घी और उसका चौथा ही हिस्सा नमक, ये ऐसा बताया गया है। और इस प्रकार से करते हैं तो वो टेस्ट बराबर आती है। तो नमक एक, उसके चार गुना घी, उसके चार गुना दाल, उसके चार गुना चावल, ऐसा लेना है इस प्रकार से। लेकिन हमारे हिसाब में हर औरत का एक अपना अपना तरीका होता है, परंपरा चली रहती है,
हाँ।
तो उसके आधार पर वो बनाते रहते हैं। कहीं अभी विदर्भ में आप जाएंगे महाराष्ट्र में तो बहुत तीखा खाते हैं लोग, बाकी महाराष्ट्र में उतना नहीं तीखा खाते। कोकण में जाएंगे तो चावल का प्रभाव ज्यादा है, देश पर जाएंगे तो ज्वार की रोटी का प्रभाव ज्यादा है वगैरह, ऐसे सभी से पंजाब में जाएंगे तो गेहूं का है,
रीजनल इन्फ्लुएंसेस हैं और उनके वो ट्रेडिशनल, उनकी परंपरा
में, और उसमें फिर ये बताते रहते हैं कि ये करना है या नहीं करना है इस प्रकार से। लेकिन संयोग विशेष को आरंभ कर सकता है और उसको भली भांति समझ लेना चाहिए, अगर इस प्रकार का कुरुद्धान न हो जाता है तो हमारे लिए समस्या खड़ी कर देता है। मैंने एक उदाहरण बताया था, मराठी में भी बताया था, अंग्रेजी में भी परसों बताया था। मेरे पास एक न्यूराइटिस का मरीज आया, पांव में जलन बहुत होती थी इस प्रकार से, तो विटामिन बी की डिफिशियंसी मानी जाती है एलोपैथी में, तो बहुत सारे डेरिवेटिव्स B12, B6 वगैरह से बहुत सारे कुछ दिए, फायदा नहीं हुआ, तो एलोपैथी को छोड़कर मेरे पास आया आयुर्वेद के लिए। जब मैंने हिस्ट्री ले ली तो पता चला कि एक बहुत ही अजीब कारण था उसके बारे में, कि हर रोज तीन केले लेके जाता था बाहर से, कंपनी से दूध लेता था, रोटी घर से ले जाता था, और चिकन बना के तीन केलों का हर रोज खा रहा था रोटी के साथ, इसे 10 वर्ष किया।
अच्छा, दूध और केला,
दूध और केला
रोटी,
हाँ हाँ, कॉन्स्टेंटली। तो हमारे हिसाब में ये एक विरुद्धांग है और वो पाददाह, ये बीमारी जो है वो पाददाह कहलाती है, उसका कारण है इस प्रकार से। तो फिर मैंने उसको प्रसव बंद करवाने के लिए कहा। अब इसे परहेज करने से भी वो ठीक हो सकता है, सिर्फ बात ऐसी है कि 10 वर्ष लगेंगे ठीक होने में, क्योंकि उसकी मूल प्राकृतिक स्थिति 10 वर्ष पहले थी, फिर ये खाना आरंभ हुआ। पहले 5 वर्ष तकलीफ नहीं हुई, फिर भी फिर आगे तकलीफ शुरू हो गई और फिर वो इतनी बढ़ती गई और कुछ फायदा नहीं हुआ, किसी के ट्रीटमेंट का कुछ फायदा नहीं हुआ। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, ऐसी स्थिति है तो पंचकर्म करवा लेना सबसे अहम चीज है, तो तुरंत दोष वैषम्य रोग कम हो जाता है। तो उसको वमन विरेचन रक्त मोक्षण तीनों करवाया, 3 महीने में वो ठीक हो गया, नहीं तो उसको 10 वर्ष लग जाते। केवल परहेज करके वो ठीक हो सकता था, उसको 10 वर्ष लग जाते थे, तो 3 महीने में केवल वो ठीक हो गया इस प्रकार से। तो ये पर्टिकुलरली विरुद्ध जो है वो हमें भली भांति समझ लेना है कि क्या पदार्थ एक दूसरे से विरुद्ध इस प्रकार के हैं, कौन से पदार्थ, और फिर उनको टालेंगे कैसे, ऐसा ही उसमें सोचना है, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। तो ये संयोग इस प्रकार का होगा। चौथा है जो राशि है प्रमाण उसका जो है वो, तो उसमें भी 2 हिस्से बनाते हैं कि संपूर्ण आहार का प्रमाण कितना होना है और एक एक पदार्थ का प्रमाण कितना होना है। तो सर्वग्रह और परिग्रह इस प्रकार से भेद बताए गए। तो सर्वग्रह के बारे में वो बताते हैं कि कुक्षी जो हमारी है, ये कि स्टमक है, उसकी कैपेसिटी समझ लो और फिर उसको 3 हिस्सों में बांटो। तो 1/3 जो है वो घन आहार लेना है, सॉलिड फूड लेना है, 1/3 द्रव आहार लेना है, उसमें पानी भी आ जाएगा
लिक्विड,
और 1/3 कोष्ठ को रिक्त रखना है। तो 2/3 ही खाना लेना है और उसमें से 1/3 घन और 1/3 द्रव इस प्रकार से लेना है। व्यवहार था ऐसा होता है कि लोग इतना कम नहीं खाते, ज्यादा ही खा लेते। हमारे एक छात्र ने प्रयोग किया था इसके बारे में, उसने जलधौती करके आमाशय का अंदाजा किया कितना पानी पीते हैं जलधौती करने के लिए। वो तो योग प्रक्रिया है, कोष्ठ में जलपान करके सभी उत्तर बाहर पानी को बाहर निकाल देना है, उसको जलधौती कहते हैं, नमक वाला जल उसमें डालते हैं। तो आमाशय की कैपेसिटी मालूम हो जाती है कि कितनी कैपेसिटी है। तो उसने जो प्रयोग किया था उसमें हेल्दी वॉलंटियर्स थे और सभी आयुर्वेद के छात्र थे, फर्स्ट बीएमएस सेकंड बीएमएस वाले। तो एवरेज कैपेसिटी आई 1200 ml। तो लेना है एक्चुअली 400 द्रव और 400 घन इस प्रकार से। इन पहली बार ऐसा किया कि सिर्फ खिचड़ी, छाछ और पानी इतना ही मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। आपको जो लेना है वो ले लो, ना लेना है ले लो। तो सभी ने करीबन 1125 ले लिया दोनों मिला के। तो ये काफी ज्यादा है, 800 से ज्यादा जाना नहीं था, अपेक्षित नहीं था। फिर उनका कहना है कि 3 घंटे के अंदर वस्तुमान नष्ट हो जाता है अन्न का, और समझ लो कि 60 किलो का आदमी है और 1 किलो का खाना खा लिया है इस प्रकार से, तो 61 किलो हो जाएगा खाना खाने के बाद, और 3 घंटों के अंदर फिर से 60 हो जाएगा। तो ये कहाँ गया वस्तुमान, कहाँ पे गया? तो उनका कहना है कि ये ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, शक्ति होती है उससे, और फिर को वजन नहीं है। तो इसलिए एक हमारे एक बुजुर्ग है, उनका एमएससी का थीसिस था कि प्रोबेबल मेथड ऑफ डिटरमिनिंग अग्रिमांज्य बाय द प्रोसेस ऑफ वेइंग, इस प्रकार उन्होंने एक परीक्षण किया कि वार्ड वाइज की क्वार्टर्स थी और वो हट्टे कट्टे रहते थे, अग्नि बहुत अच्छा रहता था तो टूट पड़ते थे आहार के ऊपर। तो उनको बताया गया है कि आपको सिर्फ इतना करना है कि जितना भी आपको लेना है खाना और पानी उसके साथ में, वो सब एक बार ही ले लेना कटोरी में, और फिर उसका वजन कराते और फिर भोजन खत्म होने के बाद फिर कटोरी का, खाली कटोरी का वजन कराते, तो कितना अंदर गया ये तो आपको पता चलेगा। और फिर 1-1 घंटे के बाद वजन करते रहे उस व्यक्ति का, तो 3 घंटों के अंदर वो प्राकृतिक स्थिति में आ जाता है। अभी इन्होंने सोचा कि ठीक है, ये अगर सक्सेसफुल हुआ है तो उसी के आधार पर आगे भी इसके बारे में प्रयोग कर सकते हैं इस प्रकार से। तो रोगियों में ऐसा देखा गया कि जिनमें अग्निमांड्य है अग्नि अच्छा नहीं है, पचन क्षमता अच्छी नहीं है, उसमें चार घंटे पांच घंटे छह घंटे तक भी वजन कम नहीं हो रहा, वैसे के वैसा रहता है। ऐसे भी कुछ मरीज मिलते हैं कि रात को खाना खाया और पचन हुआ ही नहीं बिल्कुल, सुबह उल्टी हो गई और खाना जैसे के तैसे निकल गया, तो उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। इस प्रकार से तो हमें समझ लेना है कि सबसे अति मंदाग्नि है ये, इस प्रकार की अगर स्थिति हो तो बहुत ही मंदाग्नि है इस प्रकार से। तो इसके आधार पर अग्निमांड्य के बारे में सोच सकते हैं, ऐसा उनका थीसिस था। कहने का मतलब यह है कि त्रिविध कुक्षीय इस प्रकार का एक अध्याय बताया चरकाचार्य ने, तो एक तिहाई घन एक तिहाई द्रव इतना ही आहार ले रहा है सभी व्यक्तियों को, और फिर उससे एनर्जी बनी रहनी चाहिए, वेट मेंटेन होना चाहिए, ये अगर चीजें हैं और सुख से परिणमन हो रहा है, बाकी सभी आरोग्य के चिन्ह अगर दिखाई देते हैं तो समझ लेना चाहिए कि बराबर कर रहा है। थोड़ा सा रिट्रोस्पेक्टिव जाकर करेंगे या फिर जलवृत वगैरह इस प्रकार से करके कुक्षी का अंदाजा लेके अपना प्रमाण निश्चित कर ले तो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। तो ये सर्वग्रह की बात रही, सभी आहार का एक साथ में होना। दूसरा जो है परिग्रह करते हैं कि एक एक का प्रमाण कितना होना है इस प्रकार से, तो दाल कितनी लेनी है, चावल कितना लेना है, रोटी कितनी लेनी है, सब्जी कितनी लेनी है वगैरह वगैरह। तो इनका कहना है कि षड्रस मधुर प्राय, छह रस होने चाहिए आहार में और उसमें मधुर रस का प्राधान्य होना चाहिए। तो मधुर रस का यानी कि शक्कर गुड़ ऐसा नहीं, चावल रोटी वगैरह ये सब जो है ये भी मधुर रस के ही है, तो वो ज्यादा होने चाहिए और व्यंजन कम होना चाहिए, जो सब्जी हो अचार हो करी हो बाकी जो कुछ चीजें साइड में चीजें है वो कम होनी चाहिए और ज्यादा महत्व मूल खाने को इस प्रकार के देना चाहिए। अभी फिलहाल लोग ऐसे भी मिलते हैं, खास करके आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो अचार भंडार रहते हैं, बड़े बड़े दुकान रहते हैं और 50-50, 60-60 तरीके के अचार मिलते हैं। लोग सब्जी जैसा अचार खाते हैं, सब्जी नहीं लेते हैं, उतना बड़ी मात्रा में अचार लेते हैं और रोटी के साथ खा लेते हैं, तो ये नहीं बराबर। मधुर रस का जो है वो ज्यादा होना है और बाकी रस जो है वो कम मात्रा में व्यंजक इसी प्रकार से ही होने हैं, ऐसा उसका कहना है। तो इसलिए परिग्रह में बाकी द्रव्यों का प्रमाण, एक हर द्रव्य का प्रमाण कितना होना है ये डिसाइड करना है वास्तव में, ऐसा है। तो ये बात रही राशि की। फिर देश की बात बताते हैं, देशा पुनः द्रव्याणम उत्पत्ति प्रचारो, कहाँ पे निर्माण हुआ, कहाँ पे प्रचार हुआ द्रव्य का। कुछ रीजन्स प्रदेश ऐसे होते हैं कि कुछ चीजें वहीं अच्छी बनती है, कोकण में आम अच्छा बनता है, नागपुर में संतरी अच्छी बनती है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जिसका किसी न किसी तरीके से विशिष्ट द्रव्यों से संबंध होता है,
जिसको रीजनल इन्फ्लुएंस,
रीजनल फूड्स, तो उसमें खासियत रहती है जो अन्य जगह नहीं होता है। और उस दृष्टि से देखा जाए तो उत्पत्ति कहाँ हुई है, प्रचार कहाँ पे हुआ है। अभी ये ग्लोबलाइजेशन है, मुझे काफी आश्चर्य रहा कि मैं मस्कत गया था और भारत में कुछ नहीं मिलते, उतने सारे पदार्थ मस्कत में मिलते हैं। वहां तो कुछ उगता नहीं है,
सब बाहर से आता है।
ये भारत से आता है, श्रीलंका से आता है, पाकिस्तान से आता है या फिर बाकी अन्य देशों से भी आता है इस प्रकार से, तो काफी चीजें मिल जाती है इस प्रकार से है।
और फिर वो असामयिक रूप में भी मिलती हैं, जैसे यहाँ पर है, हम लोग कैलिफोर्निया में हैं, आपको यहाँ पर जो गर्मी ग्रीष्म ऋतु के गर्मी के फल हैं वो आपको सारे साल भर मिलेंगे, द्राक्षें आपको सर्दियों में मिलेंगी क्योंकि वो दूर से आ रहे हैं, दूसरे क्षेत्रों से आ रहे हैं, जहाँ पर अगर साउथ अमेरिका से आ रहे हैं कहीं से आ रहे हैं तो वहां पर तो उनके लिए समर हुई
ग्रीष्म ऋतु। तो ये चीज रहती है, अभी ये ऑफ सीजन खाए या न खाए ये एक अलग चीज है। जो चीज जिस सीजन में बनती है वो उस सीजन के लिए अच्छी है, निसर्ग ने बनाया है उसको इस प्रकार से, फिर भी हम उसको रख देते हैं, रेफ्रिजरेट कर देते हैं और फिर बाद में खाते हैं किसी दूसरे मौसम में वगैरह ऐसे कुछ इस प्रकार से, तो ये भी हमारे हिसाब में अच्छा नहीं है वास्तव में। लेकिन उत्पत्ति और प्रचार ये देश में आते हैं, काल एक और फैक्टर बताते हैं कि आहार सेवन के लिए अहम चीज है। तो सजीर्ण लक्षण अपेक्षा इस प्रकार से बताते हैं कि पहला भोजन खत्म होने के बाद यानी कि पूर्ण उसका पचन हो गया तभी दूसरा लेना है, और भूख लगी है तो दूसरा लेना है। और खास करके ये जो नियम है ये सुबह का जब खाना ले लेंगे तो हमें 100% विश्वास होना चाहिए कि कल का खाना पचन हुआ है, नहीं तो नहीं खाना है। और सिर्फ नहीं खाना इतना ही नहीं कि ब्रेकफास्ट जो है वो कम से कम कल का भोजन पूरा पच गया है तभी लेना है। सायंकाल का भोजन शायद सुबह का भोजन पचा नहीं है पूरा तो भी ले सकते हैं, लेकिन आज के कल का नहीं लेना है। कल अगर लेना है तो आज का पचन पूर्ण होना है। तो इसलिए उठते समय ही वो बात करते हैं कि जीर्णा जीर्णम निरूपयन, ब्राह्मी मूर्ति उत्तिष्ठ जीर्णा जीर्णम निरूपयन। तो गत दिन का खाना जीर्ण हुआ है नहीं हुआ है देखकर ही उठो इस प्रकार से। और फिर वो खाना हजम हो गया ये देखना बहुत जरूरी इस प्रकार से हो जाएगा।
तो ये अंदाजा होना कि कल रात का खाया अगले दिन सुबह पूरी तरह उसके पाचन हो गया, तो ये स्वाभाविक रूप से ही
मल विसर्जन उसका हो जाता है। जैसे कि एक बात मैंने कही थी कि सार और किट्ट विभाजन होता है और त्याज्य भाग जो है वो किट्ट और उससे आगे मल निर्माण होता है या मूत्र निर्माण होता है। तो जब मेन प्रोडक्ट अच्छा बनेगा तो वेस्ट प्रोडक्ट भी अच्छा ही बनेगा। तो ये अच्छे बनेंगे तो समझ लेना है कि पचन अच्छा हुआ है। उद्गार शुद्धि उत्साह हो वेगोत्सर्ग हो यथोचित लघुता पिपासाच जीर्ण आहार से लक्षण इस प्रकार से बताते हैं कि जीर्ण आहार हो गया है कैसे समझे। तो कभी खट्टे डकार आते हैं या फिर उद्गार बाहुल्य रहता है तो उसमें कम से कम शुद्ध उद्गार होने चाहिए ऐसा बताते हैं। अन्न के उद्गार नहीं आने चाहिए, उद्गार शुद्धि उत्साह की प्रचिति होनी चाहिए। वेगोत्सर्गो यथोचित मलमूत्र विसर्जन प्राकृतिक रूप में होना है और शरीर में हल्कापन महसूस न लाघव इस प्रकार का। तो और क्षुधा और तुषा दोनों की प्रचिति होना, ये अभी सभी लक्षण है तो समझ लेना चाहिए कि पचन अच्छा है और फिर भूख लगने पर आहार लेना है ऐसा बताते हैं। तो ये काल वाचक पदों में सभी आता है। दूसरी भी एक ऐसी चीज रहेगी कि काल के अन्न का पचन हुआ है, अन्न का पचन हुआ है ये हमें भलीभांति समझ लेना है। इसमें जो सातवां जो है उपयोग संस्था के बताते हैं कि उपयोग कैसे करना है, नियम उसके बारे में बताते हैं। उष्णम स्निग्धम मात्रावध जीर्णे ने भुंजीत इस प्रकार के, और फिर आगे भी अहसन अजलपन तन्मना भुंजीत इस प्रकार से बताते हैं। तो इनके मतलब कहने का है कि जो खाना खाना है वो गर्म खाना खाना है, एक अहम चीज है। और गर्म का मतलब ताजा है, फिर से दोबारा गर्म किया हुआ नहीं, जो ताजा है और इसलिए गर्म है वही खाओ। अब ये दिक्कत वाली बात होती है, हम टिफिन लेकर चलते हैं और फिर खाना दोपहर में खाना है वो तो ठंडा हो जाता है, उस माइक्रोवेव में गर्म करेंगे तो भी वो ठीक नहीं है। तो हम सुझाव देते हैं कि जो गर्म रखने वाले थर्मास जिस प्रकार के है इसका कुछ इस्तेमाल करो ताकि वो मिले। या फिर मैंने एक सुझाव अंग्रेजी के मुलाकात में दिया था कि सुबह जब निकले घर से हमारा खाना तैयार करके वो इस प्रकार के टिफिन में डाल के रखे और चले और स्लो कुकर में लगा के जाए, घर में 8 घंटे में होने वाला है तो जब तक हम आ जाएंगे तब तक दाल या फिर सब्जी पक जाएगी, तो फिर तड़का देना 15-20 मिनट का काम है तो आके आपको गर्म गर्म खाना जो ताजा है वो मिल जाएगा
शाम के लिए।
हाँ, शाम के लिए तो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार से। तो उष्ण होना है, स्निग्ध होना है, घृतपूर्वम समझनीय इस प्रकार से, घृत लेना ही है उसके बारे में हम अलग से बहस करेंगे घृत वगैरह के बारे में, लेकिन घृतपूर्वम समझनीय इस प्रकार का है, पहले घी वाला लेना है। पहले एक ऐसी पद्धति रहती थी कि किसी को मेहमान को बुलाया है घर पे तो सभी परोसने के बाद यजमान अंत में घी डालता है और फिर भोजन आरंभ होता है, ऐसे रिवाज है इस प्रकार, और फिर वो ही ले लेते हैं शुरू में दाल चावल और घी इस प्रकार और फिर बाकी सेवन करते हैं। तो ये सबसे अहम चीज इस प्रकार की है। अब ये लो फैट नो फैट ये सब फैड है, उसका कोई आरोग्य उससे बनने वाला नहीं है, तो स्निग्ध होना है इस प्रकार
और उसकी जो सही मात्रा है उसमें
सही मात्रा होनी चाहिए, ये तो सही है, उसमें कोई तली हुई चीजें नहीं लेनी है, ये भी उतना ही सही है। फिर मात्रावध होना है, योग्य मात्रा में होना, सुखम यावध विजी रहती, जितना खाने पर वो पच जाएगा सुलभ आसानी से पच जाएगा उतनी ही मात्रा लेनी है, जैसे कि ये तिहाई तिहाई बात कही घन और द्रव की इस प्रकार से। और जीर्णेन में भुंजित, पहला अन्न पचन हो गया है और फिर न्याय लेना है। अजलपन, कुछ उसमें बकबक नहीं करनी है, मौन व्रत रख के खाना खा लेना है। तो अभी फिलहाल ऐसा चलता है कि जो विषय हम चाहते नहीं है हमारे लिए दुख के विषय है वो निकाल लेते सभी फैमिली मेंबर्स इकट्ठा हो गए। फिर अचानक उनको याद आता है, अरे हमारे बच्चे ने अच्छी तरक्की नहीं की है, मार्क कम मिले हैं उसको, तो वही कोसने के लिए जगह मिल जाती है
सब, क्योंकि सब वहीं पर एकत्रित होते हैं उस समय।
तो ये सरासर गलत इस प्रकार का है जिससे माहौल पूरा बदल ही जाता है। तो अजलपन अहसन, हंसना भी नहीं है एक्चुअली। मैं कहता हूं कि ऐसी बुरी चीजें कहने से बेहतर हंसना है लेकिन वो भी नहीं है एक्चुअली, मौन व्रत करके खाना है। और तन्मना भुंजित, उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके खाना खाना है।
तन्मना
तो यहाँ टीवी चालू है, रीडिंग कर रहे हैं, मोबाइल पर बोल रहे हैं और खाना खा रहे हैं, ये सब गलत बात है। तो पूरा ध्यान हमारा खाने पर होना है इस प्रकार से। और ये चीज तो अभी दिखाई नहीं देती, टीवी तो बहुत कॉमन है, मोबाइल पर बोलते बोलते खाना खाना ये भी कॉमन है, वर्किंग लंच कंसेप्ट है वो भी बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। तो बेहतर ऑप्शन है अग्निहोत्र समो विधि, अग्निहोत्र जैसा इसका पावित्र्य है तो उसी के हिसाब से उसी के ऊपर ध्यान देकर खाना खाओ, ऐसा है। और आठवां जो है उपयोक्तृ या उपयोक्ता जो खाना खाने वाला है उसको भली भांति समझना है कि मुझे क्या चीजें भाती है या फिर पीड़ा नहीं करती, साथ में हो जाती है, उसी का सेवन करना है। मुझे अगर मालूम है कि इसके मुझे तकलीफ होती है तो नहीं खाना है, एलर्जी है किसी चीज की तो नहीं लेना है। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि आत्मानम अभी समीक्षा भुंज सम्यक, कि आपने आपकी परीक्षा करें, आपने को क्या पसंद है नहीं है या क्या भाता है नहीं भाता है, सूट करता है नहीं करता है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए लेना है या नहीं लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, ये सब सोच समझ कर करें। तो ये आहार विधि विशेषायतन हो गए आठ जो है वो, प्रकृति करण संयोग राशि देश काल उपयोग संस्था और उपयोग नियम इस प्रकार उपयोगता इस प्रकार से। तो इन सभी भावों को ध्यान में रखते हुए आहार का सेवन करना है, ऐसी चीज बताते हैं। तो अभी ये काफी गहराई का विषय है, हर व्यक्ति के लिए कौन सी चीजें ठीक है कौन सी नहीं है इसके बारे में एक सामान्य रूप से उन्होंने बताया है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है इस प्रकार से। लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें ऐसी रहती है कि वैद्य की सलाह लेवे, ये सबसे अहम चीज है। और काफी परिवर्तन इस सभी भावों में आ गए हैं तो उसको भलीभांति कैसे समझ लेंगे, ये अलग चीज है,
बहुत जरूरी।
हाँ, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे आज रुकते हैं
जी। हाँ,
और अगले मुलाकात में उसके बारे में थोड़ा और ज्यादा
और गहराई से बात करेंगे। धन्यवाद। तो इसी के साथ हम आज के इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।